लुका की मार्फत इंजील बाब 14। सबत के एक दिन ईसा खाने के लिए फरीसियों के किसी रहनुमा के घर आया। लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वहां एक आदमी ईसा के सामने था जिसके बाजू और टांगे फूले हुए थे। यह देखकर वो फरीसियों और शरीयत के आलिमों से पूछने लगा, क्या शरीयत सबत के दिन शिफा देने की इजाजत देती है? लेकिन वो खामोश रहे। फिर उसने उस आदमी पर हाथ रखा और उसे शिफा देकर रुखसत कर दिया। हाजरीन से वो कहने लगा, अगर तुम में से किसी का बेटा या बैल सबत के दिन कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे फौरन नहीं निकालोगे? इस पर वो कोई जवाब न दे सके। जब ईसा ने देखा कि मेहमान मेज पर इज्जत की कुर्सियां चुन रहे हैं तो उसने उन्हें ये तमसील सुनाई, जब तुझे किसी शादी के ज़ियाफ़त में शरीक होने की दावत दी जाए तो वहां जाकर इज्जत की कुर्सी पर न बैठना, ऐसा न हो कि किसी और को भी दावत दी गई हो जो तुझसे ज्यादा इज्जतदार है, क्योंकि जब वो पहुंचेगा तो मेजबान तेरे पास आकर कहेगा, जरा इस आदमी को यहां बैठने दे, यूं तेरी बेइज्जती हो जाएगी और तुझे वहां से उठकर आखिरी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करना, बल्कि जब तुझे दावत दी जाए तो जाकर आखिरी कुर्सी पर बैठ जा। फिर जब मेजबान तुझे वहां बैठा हुआ देखेगा तो वो कहेगा, दोस्त सामने वाली कुर्सी पर बैठ, इस तरह तमाम मेहमानों के सामने तेरी इज्जत हो जाएगी, क्योंकि जो भी अपने आप को सरफराज करे उसे पस्त किया जाएगा और जो अपने आप को पस्त करे उसे सरफराज किया जाएगा। फिर ईसा ने मेजबान से बात की, जब तू लोगों को दोपहर या शाम का खाना खाने की दावत देना चाहता है तो अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों या अमीर हमसायों को न बुला, ऐसा न हो कि वो इसके अवज तुझे भी दावत दें, क्योंकि अगर वो ऐसा करें तो यही तेरा मुआवजा होगा। इसके बजाय ज़ियाफ़त करते वक्त गरीबों, लंगड़ों, मफलूजों और अंधों को दावत दे, ऐसा करने से तुझे बरकत मिलेगी, क्योंकि वो तुझे इसके अवज कुछ नहीं दे सकेंगे, बल्कि तुझे इसका मुआवजा उस वक्त मिलेगा जब रास्तबाज जी उठेंगे। ये सुनकर मेहमानों में से एक ने उससे कहा, मुबारक है वो जो अल्लाह की बादशाही में खाना खाए। ईसा ने जवाब में कहा, किसी आदमी ने एक बड़ी ज़ियाफ़त का इंतजाम किया, उसके लिए उसने बहुत से लोगों को दावत दी। जब ज़ियाफ़त का वक्त आया तो उसने अपने नौकर को मेहमानों को इत्तला देने के लिए भेजा कि आए, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो सब के सब माजरत चाहने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत खरीदा है और अब जरूरी है कि निकलकर उसका मुआयना करूं, मैं माजरत चाहता हूं। दूसरे ने कहा, मैंने बैलों के 5 जोड़े खरीदे हैं, अब मैं उन्हें आजमाने जा रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं। तीसरे ने कहा, मैंने शादी की है इसलिए नहीं आ सकता। नौकर ने वापस आकर मालिक को सब कुछ बताया। वो गुस्से में होकर नौकर से कहने लगा, जा सीधे शहर की सड़कों और गलियों में जाकर वहां के गरीबों, लंगड़ों, अंधों और मफलूजों को ले आ। नौकर ने ऐसा ही किया। फिर वापस आकर उसने मालिक को इत्तला दी, जनाब जो कुछ आपने कहा था पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी मजीद लोगों के लिए गुंजाइश है। मालिक ने उससे कहा, फिर शहर से निकलकर देहात की सड़कों पर और बाड़ों के पास जा, जो भी मिल जाए उसे हमारी खुशी में शरीक होने पर मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि जिनको पहले दावत दी गई थी उनमें से कोई भी मेरी ज़ियाफ़त में शरीक न होगा। एक बड़ा हुजूम ईसा के साथ चल रहा था। उनकी तरफ मुड़कर उसने कहा, अगर कोई मेरे पास आकर अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों, बल्कि अपने आप से दुश्मनी न रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं, और जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न हो ले वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अगर तुम में से कोई برج تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر پورے اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اسے تکمیل تک پہنچا سکے گا یا نہیں؟ ورنہ خطرہ ہے کہ اس کی بنیاد ڈالنے کے بعد پیسے ختم ہو جائیں اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر جو کوئی بھی دیکھے گا وہ اس کا مذاق اڑا کر کہے گا، اس نے عمارت کو شروع تو کیا لیکن اب اسے مکمل نہیں کر پایا۔ یا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ نہیں لگائے گا کہ وہ اپنے 10,000 فوجیوں سے ان 20,000 فوجیوں پر غالب آ سکتا ہے جو اس سے لڑنے آ رہے ہیں؟ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غالب نہیں آ سکتا تو وہ صلح کرنے کے لیے اپنے نمائندے دشمن کے پاس بھیجے گا جب وہ ابھی دور ہی ہوں۔ اسی طرح تم میں سے بھی جو اپنا سب کچھ نہ چھوڑے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اسے کیوں کر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ نہ وہ زمین کے لیے مفید ہے نہ کھاد کے لیے، بلکہ اسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے،